समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, आधे घंटे के दैनिक कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ उनके पास खास। खेल जगत की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। चर्चा करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जयंती। परिक्रमा के आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी स्पेशल बसंत पंचमी एपिसोड ऑफ परिक्रमा एंड हियर इज विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी 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 हैप्पी बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी के दिन जाहिर सी बात है सरस्वती पूजा भी होती है, वेयर एवरीवन वर्शिप्स विजडम एंड लर्निंग एंड नॉलेज। सो हियर इज विशिंग ऑल ऑफ यू एंड योर यंग वंस टू गेन एंड अटेन लॉट्स ऑफ नॉलेज इन एवरी स्फीयर सो दैट ऑफ कोर्स यू कैन ग्रो एंड नेशन ऑल्सो ग्रोज। उसके अलावा ऑफकोर्स जब बसंत अपने रंग बिखेरना शुरू कर गई है तो मुकेश कुछ ही दिनों में जो है हम लोग देखेंगे हर तरफ जो है बसंत के जो फूल होते हैं खास तौर से हर तरफ खिल रहे होंगे। ऑल दो फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड द स्प्रिंग कम्स इन आवर कंट्री, नन द लेस इट फिल्स एवरी वन विद जॉय एंड हैप्पीनेस।
और इसके अलावा आज की जो डेडलाइन का हमारा रहेगा उसमें बसंत पंचमी के बारे में और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हम अपने श्रोताओं को बताएंगे।
एब्सोल्युटली, बट First, let's start with the headlines. Lok Sabha takes up motion of thanks on President's address. Opposition MPs create ruckus in both houses of Parliament, demanding discussion on Mahakumbh incident.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन, विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे।
Election Commission prohibits exit polls for Delhi Assembly election on voting day.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 में तकनीकी खराबी, सैटेलाइट फिर चालू करने की रणनीति पर काम जारी।
इंडियन अमेरिकन वोकलिस्ट चंद्रिका टैंडन विंस ग्रैमी अवार्ड फॉर एल्बम त्रिवेणी इन बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट कैटेगरी, सिंगर बियॉन्से बैग्स बेस्ट कंट्री एल्बम अवार्ड फॉर काउबॉय कार्टर।
और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
And now it's time for Dateline India, and as Mukesh had already told that today we are going to talk about Basant Panchmi and everything related to it. And of course, जब Basant Panchmi हुई तो जाहिर सी बात है आज के दिन महाकुंभ में सबने अमृत स्नान लिया।
जी बिल्कुल, तो आइए हम संगीत और कला की देवी सरस्वती के ज्ञान से प्रेरणा लें। वसंत पंचमी या वसंत पंचमी सर्दियों के मौसम के जाने की शुरुआत और गुनगुनाती गर्मी के आने की शुरुआत का प्रतीक है। 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद सूर्य धीरे धीरे मकर रेखा से उत्तर की ओर यात्रा शुरू करता है और इसी के कारण सर्दी धीमे धीमे समाप्त होती है और जिससे गर्म दिन शुरू हो जाते हैं।
Yes, a pleasant change in the season heralds the arrival of spring as the subcontinent heaves a sigh of relief from the severe chilling winters. And you know that after this transition period of around 30 days starting from Basant Panchmi, spring comes into full bloom around the time of Holi. Aur isiliye jo hai kehte hain ki jab Holi khel li jati hai uske baad almost garmiyan aa hi jati hain. And I remember as I think everyone would be able to relate it ke Holi ke dino mein sabse pehle hum log ko jo रंग फेंका जाता था तो वो पहली बार होता था जब लोग ठंडा पानी पड़ता था और सब लोग कांप उठते थे। बट दैट वाज द ऑनसेट ऑफ समर्स।
बिल्कुल, प्राचीन काल में वसंत पंचमी सरस्वती नदी का भी त्योहार था। भारत के कई हिस्सों में इस त्योहार को सरस्वती पूजा के रूप में जाना जाता है जो देवी सरस्वती की आराधना करने का दिन है। सरस्वती रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी भी है।
Absolutely, Saraswati pujas are held in houses where while Saraswati temples are decorated and they are thronged by devotees. In South India, it is celebrated as Shri Panchami, Shri being one of the names of Goddess Lakshmi. It is a day that celebrates knowledge, prosperity, and creative energy.
बिल्कुल सायरा, इस दिन की जो एक मान्यता है वो भी अपने श्रोताओं को बताऊं। सरस्वती नदी पश्चिमोत्तर भारत की प्राचीन नदी थी जो समय के साथ सूख गई। उन दिनों वसंत ऋतु के आगमन के साथ हिमालय के ग्लेशियर पिघल जाते थे जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह बढ़ जाता था। नदी के किनारे उगने वाले सरसों के पौधे पूरी तरह से खिल जाते थे। सरसों के फूलों का पीला रंग कई मील तक नदी के किनारों को सजाता था, जिससे एक अद्भुत दृश्य नजर आता था।
और आपने सरसों के फूलों की जिक्र किया तो जाहिर सी बात है मुझे अमीर खुसरो ने बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं बसंत के ऊपर। इनफैक्ट कल हजरत निजामुद्दीन दरगाह में बहुत ही धूमधाम से बसंत पंचमी का आगमन किया जाता है। वेरी फ्यू पीपल नो दैट एवरीवन इज क्लैड इन येलो क्लोथ्स, और जो इनफैक्ट वहां पे जो चादर भी चढ़ाई जाती है वो नई चादर होती है जो कि पीले रंग की होती है। और हर कोई जो है खुसरो के गीत सकल वन फूलेगी सरसों जो है गा रहा होता है। सो ऑल ऑफ दैट इज सो दैट इज द सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ आर ब्यूटिफुल कंट्री एंड दैट इज कह सकते हैं यही खूबसूरती है हमारे मुल्क की, इजंट इट?
जी बिल्कुल। वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती को पीले रंग के वस्त्रों से सजाया जाता है, जिससे त्योहार और नदी के साथ उनका जुड़ाव पूर्ण हो जाता है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग की खाद्य वस्तुएं भी बांटी जाती हैं।
एंड अगर आप कहते हैं कुछ लोग जो कलर थेरेपी में यकीन रखते हैं, सो दे वुड प्रॉब्ली अग्री दैट द कलर येलो इटसेल्फ यू नो ओजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी, और क्योंकि जाहिर है सूर्य के प्रकाश को भी हम लोग पेंटिंग में पीला ही दिखाते हैं एंड दैट सिंबलाइजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड पॉजिटिविटी। सो ऑफकोर्स द कलर येलो नॉट ओनली रिप्रेजेंट्स नॉलेज इन आर ट्रेडिशन बट इट इज ऑल्सो द कलर ऑफ स्प्रिंग। इट सिंबलाइजेस प्रोस्पेरिटी एंड एनर्जी एंड फिल्स एवरी वन विद ऑप्टिमिज्म।
बिल्कुल, औपचारिक शब्दों में शिक्षा को ज्ञान कौशल मूल्यों और दृष्टिकोण प्राप्त करने की एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो व्यक्तियों को दुनिया को समझने, उनकी क्षमताओं को विकसित करने और समाज में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य एक छात्र को व्यक्तिगत और सामाजिक क्षेत्रों में मूल्यवान संपत्ति में बदलना है। यह व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने, जीवन की बदलती परिस्थितियों से निपटने और सामान्य रूप से समाज की प्रगति में सकारात्मक योगदान देने के लिए उपकरण प्रदान करता है। कुल मिलाकर शिक्षा व्यक्ति को उनकी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने में सहायता करती है।
That's true. In fact, जब हम लोग बात ज्ञान की कर रहे हैं, खासतौर से in this era of technology where everyone has some or the other gadget, you know, in their houses, even children are always surrounded by gadgets. और सबसे बड़ा तो ये smartphone है. But nonetheless, in this age and era, it's very important to differentiate between loads of information that we are getting and what is knowledge. So there's a difference between knowledge and information. Similarly, there's a difference between education and literacy. हो सकता है आप PhD किए हों, लेकिन अगर आपने बेसिक एटिकेट्स नहीं है, बेसिक लोगों से बात करने के तरीके नहीं है, यू नो दीज आर बेसिक थिंग्स, देन यू आर जस्ट प्रॉब्ली अ लिटरेट पर्सन एंड नॉट एन एजुकेटेड पर्सन। आई रिमेम्बर जो हमारे बुजुर्ग होते थे, हो सकता है उनके पास बहुत सारी डिग्रीज नहीं होती थी, लेकिन घर में अगर फर्ज कीजिए कि यू नो एक दर्जन केले आए तो वो चाहेंगे कि 12 केले हर बच्चे को मिले। और अगर आज हमारे पेरेंट्स या कोई किसी बड़े को आप देखते हैं कि वो जल्दी से कोई अच्छी चीज छुपा देता है, वो सिर्फ अपने बच्चों को दे, सो वो शायद पेरेंट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ लिटरेट है लेकिन एजुकेटेड नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एज एंड एरा टू ऑल्सो टेल आवर चिल्ड्रन द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो बिटवीन बींग लिटरेट एंड बींग एजुकेटेड, एंड वी शुड ऑलवेज अप्लाई आर एजुकेशन इन वट एवर वे वी आर, नॉट जस्ट इन आवर हाउसेज, इन आवर ऑफिसेज, एंड एवरीबडी इफ ट्रूली बिहेव इन एन एजुकेटेड मैनर देन आई बिलीव आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से मुल्क की तभी सॉल्व हो सकती है।
बिल्कुल बिल्कुल।
एंड एजुकेशन कैन नॉट बी सीन एज अ प्रोसेस दैट इज लिमिटेड टू द कन्फाइंस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओनली। सिमिलरली नॉलेज इज नॉट कन्फाइंड टू बुक्स ओनली एंड इट बिगिंस द डे विद रीगेनिंग आवर कॉन्शियसनेस। फ्रॉम फैमिली वी लर्न वैल्यूज एंड बेसिक लाइफ स्किल्स एंड इन स्कूल वी लर्न टू मेक दीज स्किल्स प्रोडक्टिव एंड लर्न हाउ टू एम्प्लॉय देम टू आवर एडवांटेज। एंड आफ्टर स्कूल प्रैक्टिकल एजुकेशन बिगिंस, which is indeed the most important aspect of one's life. It can be said that education in informal terms continues till the day we die.
बिल्कुल, शिक्षा अक्सर औपचारिक स्कूली शिक्षा और एक संरचित वातावरण के भीतर ज्ञान और कौशल के अधिग्रहण से जुड़ी होती है। हालांकि शिक्षा का असली सार कक्षा की सीमा से परे है और सीखने और व्यक्तिगत विकास की आजीवन प्रक्रिया तक फैला हुआ है।
That's true, and the purpose of education is not only to impart knowledge and skills, as I said, that is, it is also to probably, you know, how you conduct yourself in every, you know, everywhere in every sphere of life, whether it is at home, whether is it in office. And sadly, at workplaces, we see that people try to gossip, but that shows that we are just merely illiterate and not educated. Or ek English mein ek bada phrase bada achha hai. What Susie says about Sally says more about Susie than Sally. To jo aap logon ke bare mein baat karte hain, wo dusre shakhs ke bare mein kam batata hai, wo ye zyada batata hai ki आप किस तरह के शख्स हैं. तो आप कहीं भी जब दूसरे के बारे में बात करें, ये ध्यान रखें कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपका अपना व्यक्तित्व किस तरह का है. एंड दैट इज प्रॉब्ली हाउ योर एजुकेशन विल आल्सो रिफ्लेक्ट इन योर पर्सनालिटी.
बिल्कुल. भले ही कोई विषय शुरू में आकर्षक या आवश्यक ना लगे, लेकिन बाद में वो जीवन में मूल्यवान सिद्ध होता है. एक सुशिक्षित व्यक्ति समाज और अपने देश पर इतना सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है जितना धन अकेले हासिल नहीं कर सकता.
And I'd like to conclude our first segment, in fact, of, you know, how Basant Panchmi and Saraswati Puja was observed by Benjamin Franklin's quote. He said that an investment in knowledge pays the best interest, and educating oneself is indeed a valuable use of both time and money. The more one learns, the greater their benefit.
और बसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान प्रयागराज कुंभ में चल रहा है. अमृत स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है.
There is this Amrit Snan or Shahi Snan holds a lot of significance. The bathing ritual is the cornerstone of the Kumbh Mela, rooted in the belief that a dip in the holy waters cleanses one of all sins and liberates both the individual and their ancestors from the cycle of rebirth, leading to moksha or spiritual liberation.
बिल्कुल. अनुष्ठान अमृत स्नान से शुरू होता है, जहां संत साधु और अखाड़े पहला पवित्र स्नान करते हैं. संतों का ये भव्य जुलूस जनता के लिए शुभ स्नान के शुरुआत का प्रतीक है. तीर्थयात्रियों का मानना है कि संतों के बाद पवित्र स्नान करने से संतों की उपस्थिति से मिलने वाली पवित्रता के कारण उनकी प्रार्थनाओं का लाभ भी बढ़ जाता है.
Absolutely. And the first Amrit Snan took place on 14th of January on Makar Sankranti, while the second one took place on Mauni Amavasya on 29th of January. And the UP government has implemented a robust security plan, because abhi hum log ne haal hi mein dekha ek badi dukhad ghatna hui wahan pe stampede ki, in which so many people lost their lives. So obviously the security plan has also been beefed up, and the Mela area of Mahakumbh has been designated as a no vehicle and no VIP zone now.
और बसंत पंचमी के रंग आपके जीवन को खुशियों और सफलता के जीवंत रंगों से रंग दें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं. और सायरा, अपने श्रोताओं को ले चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या विशेष है. इस क्रम में सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे चलते हैं. बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांड्स के चावल में सूक्ष्म प्लास्टिक कणों की मात्रा पाई जाती है. हालांकि कोल्हापुर स्थित शिवाजी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिल गोरे और उनकी टीम ने इस विषय पर शोध किया है कि ये कण स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक हैं. भारत में पहली बार डॉक्टर गोरे के साथ प्रोफेसर गोविंद कोलिकर और पीनल भावसार द्वारा विभिन्न चावल के नमूने में माइक्रोप्लास्टिक कणों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण शोध किया गया है. तो इस बारे में जानते हैं अपने संवाददाता की रिपोर्ट में.
भारत में अपनी तरह के इस पहले अभिनव शोध में डॉक्टर अनिल गोरे और उनकी टीम ने भारत से लिए गए विभिन्न चावल के नमूनों का माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण के लिए विश्लेषण किया और प्रति 100 ग्राम चावल में औसतन 30 माइक्रोप्लास्टिक कण पाए गए. ये कण 100 से 200 माइक्रोमीटर आकार के थे. अधिकांश माइक्रोप्लास्टिक रेशेदार और पारदर्शी तंतुओं के रूप में होते हैं और मुख्य रूप से पॉलीइथिलीन और पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट से बने होते हैं. ये शोध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल्स में प्रकाशित हुआ है. माइक्रोप्लास्टिक कणों से कैंसर, श्वसन संबंधी विकार और पाचन संबंधी विकार का खतरा पैदा होता है. महिलाओं में माइक्रोप्लास्टिक की खपत अधिक पाई गई, विशेषकर पुरुषों और बच्चों की तुलना में. इसलिए शोधकर्ताओं ने कहा कि इस बढ़ती हुई समस्या का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। डॉक्टर अनिल गोरे ने इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। उन्होंने किसानों को चावल की खेती के लिए तथा व्यापारियों को चावल के भंडारण के लिए टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने सुझाव दिया है कि दैनिक उपयोग में आने वाले चावल को साफ पानी या नमक के पानी के साथ धोने से उसमें मौजूद माइक्रोप्लास्टिक कणों की मात्रा कम हो जाती है। इस शोध ने भारत को माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण की पहचान कराने में महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है तथा इसके आधार पर चावल उत्पादन और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए नए रास्ते खोले हैं। डॉक्टर अनिल गोरे ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल उपायों और टिकाऊ जीवन शैली को अपनाकर इस जोखिम को कम किया जा सकता है। अपने शोध करियर के दौरान उन्हें भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिक्रमा के लिए मनोज क्षीरसागर, पुणे।
And now we go down south. Well, for the first time in the country, the Andhra Pradesh government has launched WhatsApp governance named Manmitra. This new system is set to provide 161 civil services to people through WhatsApp. Let's hear more from our correspondent.
In a vision to provide seamless real-time governance to people, the Andhra Pradesh government launched Manmitra WhatsApp governance. The services were formally launched by Minister for IT Electronics and Communication Nara Lokesh. Speaking on the occasion, he said, "This art-of-its-kind chatbot symbolizes government's vision for a digitally inclusive Andhra Pradesh where citizens can book and purchase tickets and get different certificates all within their WhatsApp." He also added that this facility is going to be a bridge between government and citizens, eliminating the prospect of fake certificates. Earlier, Chief Minister Nara Chandrababu Naidu reviewed WhatsApp governance and said that citizens going from pillar to post in government offices to secure certificates will come to an end with this new initiative. Although initially 161 services are provided through this, the government is planning to scale up to a total of 360 services through second phase. Sai Sishla for Parikrama, Akashwani, Visakhapatnam.
और अब चलते हैं झारखंड। अपने श्रोताओं को बता दें कि कल विश्व आर्द्र भूमि दिवस था। इसी अवसर पर झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। तो सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
इसके साथ ही उधवा पक्षी आश्रय पूरे भारत में नवासी और झारखंड में पहला रामसर साइट बन गया है। उधवा आश्रय में विश्व भर के कई प्रवासी पक्षी आते हैं। करीब 565 हेक्टेयर में फैले हुए इस पक्षी आश्रय को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी और तत्कालीन विधायक अनंत ओझा का प्रयास रहा था, जिसके बाद इसे ये उपलब्धि हासिल हुई है। वर्तमान वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग को इस बाबत प्रमाण पत्र जल्द ही सौंपा जाएगा। राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई दी है।
आज आप सबके माध्यम से एक और खुशी मैं जरूर देता हूँ, जब यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार उधवा को पश्चिम अभयारण्य झील को विकसित बनाने के लिए हमने विगत 10 वर्षों में कई प्रयास किया था। तत्कालीन उस समय वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा श्री मनीष तिवारी जी के द्वारा भी कई कदम उठाए गए थे और आज मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस संकल्पना को साकार किया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में रामसर प्रोजेक्ट में हमारा उधवा पक्षी अभयारण्य झील को भी शामिल करने का काम किया है। साहेबगंज जिले वासियों की ओर से, झारखंड वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को उनका अभिनंदन करते हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
परिक्रमा के लिए साहिबगंज से आनंद ओझा के साथ रांची से शिल्पी की रिपोर्ट।
और सारा आप बताएं कि व्यापार जगत में क्या कुछ चल रहा है।
Yes, benchmark domestic equity indices today ended in negative territory, mirroring fall in Asian markets amid rising global trade concerns after US President Donald Trump imposed tariffs on Canada, Mexico and China. The 30-share index at Bombay Stock Exchange or Sensex shed 319 points to close at 77,187. The National Stock Exchange Nifty 50 slipped 121 points to settle at 23,361.
और अब जान लेते हैं खेल जगत की हलचल। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक के 15 वर्षीय जोनाथन गेविन एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। सेना के एक अन्य निशानेबाज गुरप्रीत सिंह ने 220.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह चौथे स्थान पर रहे। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अंडर 19 आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने पर दूसरी बार यह खिताब जीतने पर टीम को 5 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।
And And now it's time for Azadi Ka Safar.
On 3rd February 1928, the Indian Statutory Commission, popularly known as Simon Commission, arrived in Bombay. The commission was constituted to report on the working of the Government of India Act of 1919. The purpose of their visit was to study constitutional reform in British India and to suggest more such reforms. The commission consisted of 7 members, all of whom were British, under the joint chairmanship of John Simon and Clement Attlee. Since the British administration had failed to include even a single Indian in the commission, it was strongly opposed by national leaders and freedom activists.
Simon Commission! Simon Commission! Bharat Mata Ki! Vande Mataram! Vande Mataram!
During the annual session of the Indian National Congress held at Madras in 1927, it was decided to boycott the commission. On the arrival of the commission in India, the entire country observed a hartal. Meetings were held all over the country to condemn the appointment of the commission. The commission was confronted by protesters who thronged every city where the commission went. The British came down heavily on the strikes. There was firing at demonstrators in Madras and lathi charge at many places. The Central Legislative Assembly decided by a majority that it would have nothing to do with the commission. All over the country, the cry of Simon, go back, was raised. In Lucknow, Govind Ballabh Pant suffered blows of police lathis. The lathis' blows crippled Govind Ballabh Pant for life.
On October 30, 1928, when the commission visited Lahore, Lala Lajpat Rai led the people to protest against the commission. The protest was peaceful, but in an act of retaliation, James A. Scott, the then superintendent of police, ordered a lathi charge against the protesters. Lala Lajpat Rai was severely injured. In spite of being subjected to brutal blows, Lala Lajpat Rai addressed the crowd even before the arrival of medical help and stated that the blows struck at him were the final set of nails in British India's coffin. Unfortunately, Lala Lajpat Rai succumbed to his injuries on November 17, 1928.
Simon Commission nevertheless published a 2-volume report. It proposed provincial autonomy in India, but rejected parliamentary responsibility at the centre. The British government had seen the opposition the Simon Commission faced in India and tried to calm down the people by saying that the opinion of Indians will be taken into account in any such future exercise. Later, the British government held roundtable conferences in London to discuss the constitutional reforms in India.
We also remember freedom fighter Bhavani Prasad, who was martyred on 3rd February 1935. A political activist, Bhavani was born in 1914 at village Joydepur in the district of Dhaka, now in Bangladesh. He got involved in Bengal's revolutionary movement and joined the Sri Sangha revolutionary group in Dhaka.
In 1934, Bhavani Prasad, along with his comrades Ravi Ranjan Banerjee, Manoranjan Banerjee and Ujjwala Majumdar, planned to assassinate the oppressive governor of Bengal, John Anderson, at the Lebong Racecourse, Darjeeling, on the 8th of May 1934. Bhavani approached the governor and fired, but mistakenly shot a British woman. Bhavani was wounded in the exchange of fire with the police. He was caught and sent to jail. The court later sentenced him to death in the case. Bhavani Prasad was hanged on the 3rd of February 1935 in Rajshahi Central Jail.
और अब हम याद कर लेते हैं उन महान व्यक्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं सुविख्यात तबला वादक अल्ला रखा खां को। भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। इनका पूरा नाम कुरैशी अल्ला रखा खां है। अल्ला रखा खां अपने को पंजाब घराने का मानते थे। अल्ला रखा खां 12 वर्ष की उम्र से ही तबले के सुर और ताल में माहिर थे। उस्ताद कादिर बख्श से भी उन्होंने तबला वादन की शिक्षा ली थी। अल्ला रखा खां ने अपना व्यावसायिक जीवन एक संगीतकार के रूप में पंजाब में ही शुरू किया। 1945 से 1948 के बीच सिनेमा जगत में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई। संगीत के क्षेत्र में उनको योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सन 1977 में उन्हें पद्मश्री के सम्मान से अलंकृत किया और 1982 में संगीत नाटक अकादमी ने भी उनको जीवन पर्यंत सेवा के लिए संगीत नाटक अकादमी के अवार्ड से सम्मानित किया।
And recently when Zakir Hussain passed away, we saw a lot of videos getting viral on social media. तो एक जिसने सबसे ज्यादा दिल को मेरे छुआ वो थी when Zakir Hussain himself is telling in an interview that when he was born and given in the arms of his father, तो usually in Muslim households क्या होता है मुकेश के कान में बच्चे के जैसे वो पैदा होता है तो या तो कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती हैं या फिर कलमा पढ़ा जाता है, बट उनके लिए सबसे बड़ी इबादत उनका संगीत था। तो उन्होंने ताल अपने बच्चे के कान में पढ़ी तो उनकी वाइफ ने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तो ही सेड कि मेरी इबादत यही है।
बिल्कुल बिल्कुल।
सो आई थिंक दैट्स हाउ पैशनेट ही वाज एंड दैट्स व्हाई प्रोबब्ली गॉड यू नो गेव हिम दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड सो मच ऑफ एक्लेड्स फॉर हिज पैशन। Moving on, we are also remembering Raj Kanwar today on his death anniversary, a director, writer and producer of predominantly Hindi films. And though unki kuch kam filmein rahi, lekin jo unki pehli film thi Deewana, wo to kehte hain box office pe blockbuster rahi. At it was considered the director, you can say the debut of Shah Rukh Khan in the film industry.
और अब हम याद कर रहे हैं जाने माने हिंदी के यशस्वी कहानीकार राधा कृष्ण को। हालांकि उन्होंने लेखन की शुरुआत कहानी से ही की थी, लेकिन आगे चलकर उन उपन्यास भी उन्होंने लिखे, संस्मरण भी लिखे, हास्य व्यंग नाटक एकांकी पर भी अपनी कलम चलाई और बच्चों के लिए खूब मन से लिखा। यानी साहित्य की ऐसी कोई भी विधा नहीं रही जिसमें राधा कृष्ण की कलम ना चली हो।
Today we are also remembering a very fine actress of yesteryears. We are talking about Wahida Rehman.
बिल्कुल, वहीदा रहमान वो प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं और वहीदा रहमान भारतीय फिल्म इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में से एक हैं। गाइड, प्यासा, चौदहवीं का चांद, कागज के फूल, साहिब बीबी और गुलाम, तीसरी कसम आदि वहीदा रहमान की उल्लेखनीय फिल्में हैं। वहीदा रहमान का चयन वर्ष 2013 की भारतीय फिल्म हस्ती के शताब्दी पुरस्कार के लिए भी किया गया। वहीदा रहमान को ये पुरस्कार गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 20 नवंबर 2013 को प्रदान किया गया था। तो उनका एक पहले डायलॉग सुन देते हैं।
तुमने ऐसा क्यों किया राजू? पैसे की जरूरत थी तो मुझे कह देते, मैं अपने जेवर बेच देती, अपना घर बेच देती, पर तुमने ऐसा क्यों किया? सच तो ये है राजू, न मैं तुम्हें समझी न तुम मुझे समझे। राजू साथ छूट गया तब समझ में आ कि तुम मेरे लिए क्या थे, क्या हो। बार बार कोसती हूँ अपने आप को कि तुम्हें बचाने के लिए एक झूठ भी न बोल सकी। 2 साल यूं ही बीत जाएंगे राजू, फिर नए सिरे से जीवन शुरू करेंगे।
और उनकी फिल्म का अगर हम गाना ना अपने श्रोताओं को सुनाएं तो शायद उनके बारे में बताना अधूरा रहेगा।
Another actress shares her birthday today with Wahida Rehman. We are talking about Deepthi Naval. Her major contribution has been in the area of parallel or art cinema, winning critical acclaim for her sensitive and close-to-life characters that emphasize the changing roles of women in India.
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और सायरा मुज्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in पर।
नमस्कार।